नमस्कार भारत, 25 जून दिन गुरुवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। बिहार में जनता दल यू विधायक अनंत सिंह अपहरण और फिरौती के मामले में जेल भेजे गए, हत्या के एक अन्य मामले में जांच।
बाढ़ के एक मर्डर केस में आरोप है, संदेह है, सर्च किया गया, उसमें डीएनए सैंपल वगैरह लिया गया है, उसको जांच करेंगे, उसमें एविडेंस आएगा तो उसमें कार्रवाई होगी।
वसुंधरा सुषमा के बाद स्मृति ईरानी और पंकजा मुंडे पर सवाल, बीजेपी सरकार के मंत्रियों को विपक्ष ने घेरा।
जैसे तोमर के मामले में प्रॉम्प्टनेस दिखाई गई थी, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस स्मृति ईरानी के मामले में FIR दर्ज करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी।
और भारतीय मूल के बॉबी जिंदल ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में ठोकी ताल। सुनवाएंगे खेल की खबरें भी, लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार, अशोक कुमार से। बिहार में जनता दल यू के विधायक अनंत कुमार को अपहरण और फिरौती के एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार उन्हें पिछले साल पटना के पास बेठा इलाके में एक बिल्डर के अपहरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले बुधवार को अनंत कुमार के आधिकारिक निवास की तलाशी ली गई। ये कार्रवाई 17 जून को 4 युवकों के अपहरण के मामले में की गई, जिनमें से एक बाद में मृत पाया गया। पुलिस के अनुसार तलाशी में उनके घर से कुछ गोलियां और खून में सने कुछ कपड़े मिले, जिन्हें DNA जाँच के लिए भेजा गया है। अमरीकी राज्य लुइजाना के गवर्नर बॉबी जिंदल ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वो भारतीय मूल के पहले अमरीकी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। अगले साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के लिए अब तक रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 13 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन समेत अब तक 4 दावेदार सामने आए हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में 2 साल पहले हुए बम धमाके के दोषी जोखार सारनाएव ने हमले की पीड़ितों से माफी मांगी है। मैराथन के दौरान हुए इस हमले में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 260 से ज्यादा घायल हुए थे। चेचन मूल के 21 वर्षीय सारनाएव ने अदालत में खुद को औपचारिक तौर पर मौत की सजा का ऐलान होने से पहले ये माफी मांगी, लेकिन कई पीड़ितों ने कहा कि इस माफी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
I was surprised that he spoke. He said that he was remorseful. I find that hard to believe.
जो भी उसने कहा, मैं उसे सुनकर हैरान था। उसने कहा कि उसे पछतावा है। मेरे लिए इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि मैं मुकदमे के दौरान बहुत बार यहाँ आया हूँ और कभी उसे देखकर ऐसा कुछ लगा नहीं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो कुछ मुझसे छीना है वो मुझे कभी वापस नहीं मिल पाएगा। ये थे बोस्टन धमाके के एक पीड़ित के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ग्रीक प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास अपने देश के कर्ज संकट के बारे में मतभेदों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देशों से देर रात तक बातचीत करते रहे। वो यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यूरोपीय आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों से ब्रसेल्स में बात कर रहे हैं। माना जाता है कि कर्जदाता चाहते हैं कि ग्रीक सरकार टैक्स बढ़ाने और सरकारी खर्चों में कटौती के कुछ और कदम उठाए। सोमवार से ग्रीस ने ऐसे कुछ कदम उठाने का ऐलान किया है, लेकिन कर्जदाता इन्हें पर्याप्त नहीं मानते। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन की साइबर गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने वॉशिंगटन दौरे पर आए कुछ स्तरीय चीन शिष्टमंडल के सामने अपनी चिंता जाहिर की। BBC समाचार।
तारीख 25 जून दिन गुरुवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां कल दिन भर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह को लेकर राजनीतिक हलचल चलती रही। अनंत सिंह मोकामा से विधायक हैं। पुलिस ने उनकी घर की तलाशी ली, फिर उन्हें 1 साल पुराने अपहरण और फिरौती मामले में गिरफ्तार किया और देर रात उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भी भेज दिया गया। दरअसल पिछले दिनों बाढ़ में 4 युवकों के अपहरण और उनमें से एक की हत्या को लेकर अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। विपक्ष ने अनंत सिंह मामले से और पटना के SSP के तबादले को जोड़कर सरकार की आलोचना की, तो सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार से अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। जन अधिकार मोर्चा के पप्पू यादव ने भी सरकार को घेरा। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद नीतीश सरकार अपनी साख बचाने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट के साथ हैं पटना से नीरज सहाय।
पटना के वरीय अधीक्षक विकास वैभव ने कल शाम सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह को 8 महीने पुराने अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार कर पुलिस के सख्त रवैये का संकेत दे दिया। दरअसल कल पटना पुलिस ने बाढ़ थाना में इस महीने के 17 तारीख को 4 युवकों के अपहरण से जुड़े मामले में बाहुबली अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास और उनके गाँव नदबा में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को विधायक के सरकारी आवास से हथियार और खून से सने कपड़े मिले। कार्रवाई के बाद अनंत सिंह को हिरासत में लेकर सचिवालय थाना ले जाया गया। यहां आर्म्स एक्ट से जुड़ा एक और मामला दर्ज किया गया। कल शाम हुई कार्रवाई के बारे में विकास वैभव विस्तार से बताते हैं।
बाढ़ के एक मर्डर केस में सर्च वारंट दिया गया था। उसमें हमारा उद्देश्य था कि डीएनए सैंपल्स जो उस मर्डर केस से कनेक्टेड हो सकते हैं उसको कलेक्ट किया जाए। कुछ ब्लड स्टेन कपड़े मिले हैं और कुछ अन्य कपड़े या क्लोथ्स के छोटे पार्ट्स मिले हैं जिसमें कि सैंपल्स हो सके उनको कलेक्ट किया गया। पूर्व में एक पेटा पुलिस स्टेशन किडनैपिंग केस रजिस्टर्ड था जिसमें इनकी गिरफ्तारी बाकी थी, उस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। घर में 6 इंसास की मैगजीन्स जो खाली थी वो खेत में फेंकी हुई मिली थी। इसके संबंध में एक आर्म्स एक्ट का अलग से केस सचिवालय थाने में दर्ज किया गया है और उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जो आवश्यक इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे।
जानकारों के अनुसार बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर यह कार्रवाई इस बात का इशारा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से 3 महीने पहले अपराधियों के दिमाग ठंडे कर बिहार में जंगल राज 2 होने के विपक्ष के आरोप से बरी होने की कोशिश तेज कर दी है। सत्ता के गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा है कि चुनाव से ठीक पहले सुशासन का चेहरा ठीक करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का पहला शिकार बाहुबली अनंत सिंह बने हैं। पटना से नीरज सहाय।
अनंत सिंह को 14 दिनों के लिए जेल भेजे जाने के बाद मैंने कल देर रात पटना के नव नियुक्त SSP विकास वैभव से इस मामले पर बात की।
सिंह जेल चले गए, पुराना एक केस था बेटा का, उसमें पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, उसमें गिरफ्तारी बाकी थी।
जी जी,
सर्च हुआ है। बाढ़ के एक मर्डर केस में आरोप है, मतलब संदेह है, तो सर्च किया गया, उसमें डीएनए सैंपल वगैरह लिया गया है, उसको जांच करेंगे, उसमें एविडेंस आएगा तो उसमें कार्रवाई होगा।
बाढ़ वाली घटना में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी?
नहीं हुई है। उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है पुलिस का काम है ना, तो ये NIA से आए हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन हम जानते हैं कैसे किया जाता है।
जी जी,
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जो है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग, एविडेंस आएगा तो करेंगे कार्रवाई।
लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी पुरानी, आज जो बाढ़ की घटना और फिर इतनी पुरानी घटना, ये कोइंसिडेंस है या उसके मतलब समझ में नहीं आ रहा है?
मैं तो जिला में कल ही ज्वाइन किया हूँ ना
जी,
मुझे पता चला कि किडनैपिंग का केस पेंडिंग है, अरेस्टिंग होना चाहिए, इसका काम है, सबने किया, तब पुलिस से पूछे हम क्या बताएं।
तो कितने दिन के लिए अदालत ने जेल भेजा उनको?
अभी 2 हफ्ते के लिए।
ये थे पटना के नव नियुक्त SSP विकास वैभव, जो काफी जल्दबाजी में थे। बिहार के अलावा देश का राजनीतिक पारा भी कल चढ़ा रहा। दिल्ली में कल दिन भर मौसम की लुका छिपी जारी रही, लेकिन राजनीतिक तापमान चढ़ता रहा। कांग्रेस ने ललित मोदी मामले पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के त्यागपत्र की मांग तेज की और ललित मोदी के समर्थन में उनकी गवाही वाला नया दस्तावेज पेश किया और दावा किया कि इस पर वसुंधरा के हस्ताक्षर हैं। तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर कोर्ट के याचिका मंजूर किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने स्मृति से भी इस्तीफा मांगा। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की है। पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नजर सुशीला सिंह के साथ।
दिल्ली की एक कोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर उठे सवाल के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। दरअसल दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत सूचना देने को लेकर दायर की गई याचिका का संज्ञान ले लिया है। कांग्रेस का आरोप था कि स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हलफनामे में अलग अलग जानकारी दी है और मानव संसाधन विकास मंत्री होने के नाते वे जांच को प्रभावित कर सकती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन का कहना था,
क्या ये जायज है कि हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्टर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो एफिडेविट में उन्होंने अलग अलग बात रखी गई है उसके बारे में कोर्ट जब जांच कर रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से जब मांगा जाएगा कि आप बताएं कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या सत्य है क्या असत्य है, तो उस वक्त अगर एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ही रहती हैं तो क्या ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है?
उधर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि जिस तरह से उनकी पार्टी के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में तेजी से कार्रवाई की गई थी, अब उतनी ही तेजी से इस मामले में भी जाँच आगे बढ़नी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष का कहना था,
जैसे तोमर के मामले में प्रॉम्प्टनेस दिखाई गई थी उसी तरीके से दिल्ली पुलिस स्मृति ईरानी के मामले में एफआईआर दर्ज करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी और प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा लेंगे।
हालांकि बीजेपी के संबित पात्रा ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हुए सभी आरोपों को गलत बताया।
One should know the difference between fake documents and typographical errors. As far as this whole case is concerned,
फर्जी दस्तावेज और लिखावट की गलती में अंतर होता है। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, फर्जी दस्तावेज का यह मामला नहीं है। यह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की अर्जी पर केवल इतना कहा है कि आपको कारण बताना होगा कि स्मृति ईरानी को क्यों बुलाया जाए। यहां तक कि उन्हें समन तक नहीं भेजा गया है और न ही मामले में कोई फैसला आया है, तो इतना हंगामा क्यों? जहां तक 2011 और 2014 में दिए गए दोनों हलफनामों का सवाल है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। उधर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद का मामला सुर्खियों में कल भी छाया रहा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ललित मोदी के पक्ष में वसुंधरा राजे के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज सार्वजनिक किए।
पर्दा उठ गया है, भेद खुल गया है, अब कुछ बचा नहीं। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कहती है कि क्या कागजात, मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरे दिन कहती है मुझे याद नहीं है कि मैंने उस कागजात पर मेरे हस्ताक्षर हैं कि नहीं, और आज वो कागजात जनता के सामने पेश किया गया है।
हालांकि सुषमा स्वराज इस मामले में पहले ही कह चुकी हैं कि उन्होंने मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की थी। वहीं महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंकजा मुंडे ने नियमों का उल्लंघन करते हुए करीब 200 करोड़ रुपए के सामान की खरीदारी की, जिसके तहत खाने का सामान, किताबें और बर्तन खरीदे गए। महाराष्ट्र से कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत का कहना था,
जो 206 या 230 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, ये पूरी तरह से गलत तरीके से हुआ है और इसमें ग्रॉस वायलेशन ऑफ नॉर्म्स हुए हैं। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट देने की बात है, एक ही दिन में 24 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिए गए हैं। 3 लाख के ऊपर अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो ई टेंडरिंग करना ये आवश्यक बनता है महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अधीन होकर।
फिलहाल पंकजा मुंडे अमरीका में है और उन्होंने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने सामान की खरीदारी में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी भी गलत संस्था को कोई काम नहीं दिया है। फिलहाल सरकार के मंत्री एक के बाद एक नए नए मामलों में घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रही हैं, वहीं सत्ता पक्ष इन नेताओं के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन हैं।
एक के बाद एक नए नए आरोपों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आ रहे हैं। सरकार इन मंत्रियों का खुलकर बचाव तो कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वादे और इरादे की याद दिलाने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। क्या मोदी सरकार को इसका राजनीतिक नुकसान हो रहा है? यही पूछा सुशीला सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से।
प्रधानमंत्री ने एक पहले से एक स्टैंड लिए, एक वचन लिए कि एकदम साफ सुथरा पॉलिटिक्स की ये करेंगे, सरकार पॉवर्टी और करप्शन के खिलाफ हमेशा लड़ाई करेगी। इस तरह स्टैंड लेने के बाद जब पार्टी के नेता इस तरह स्कैंडल में फंस रहे हैं, अभी तक सच क्या है, ये डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं ये ऑथेंटिकेट है वो अलग बात है, लेकिन ये जो चीजें आ रहे हैं और हेडलाइंस सुर्खियों में है ये सब, लेकिन उसके बावजूद हम कोई पार्टी की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं या पार्टी की तरफ से एक प्रकार के मौन है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक दुविधा में पड़ी है। साथ साथ पार्टी के अंदर भी अपने एमपी जैसे भूतपूर्व होम सेक्रेटरी आरके सिंह ने कहा है कि इस तरह की सपोर्ट किसी को देना, जैसे ललित मोदी जैसे व्यक्ति को सपोर्ट देना, वो सही नहीं है, क्योंकि एक वो फिजिटिव है, बकोड़ा है और जो कानून के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो पार्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं कहीं के विचार जो है वो पार्टी से बाहर निकल के आ रहा है। तो इस समय नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। जो चुनौती मैं देखता हूँ एक सरकार के नाते, और दूसरा एक पार्टी जो अलग चिन्ह है, अलग से करना चाह रहे हैं, और यूपीए के खिलाफ जिस तरह कैंपेन करने के बाद सत्ता हासिल की है, उसके बाद अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड एक साल में इस तरह की चैलेंज है, तो आगे कैसे इससे ऊपर निकल के आएंगे, कैसे दिखाएंगे कि इस तरह चीजों पे हम कभी टॉलरेट नहीं करेंगे।
जी अय्यर साहब, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब स्मृति ईरानी का मामला आया है, तो ये देखने में आ रहा है कि एक के बाद एक साल में नेता जो है बीजेपी के फंसते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि एक डेंट पड़ा है पार्टी पर?
बिल्कुल, एक डेंट तो हुआ है, को आप किसी रूप में देखिए तो एक तो बड़ा डेंट हुआ है। जैसे एक साल मना रहे थे, तभी प्रधानमंत्री का यही था कि भाई हम एक साल बिना कोई स्कैम, बिना कोई प्रश्न, बिना कोई हमें कोई एलिगेशन हमारे खिलाफ किसी ने मतलब इस तरह की रिकॉर्ड हमने एक साल में किए। जब एक साल मना के अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, हम देख रहे हैं कि ये चीजें आगे एक के बाद, और उसको काउंटर करने के लिए अभी तक हम देख रहे हैं कि पार्टी की तरफ से ज्यादा कोई बड़ा कोशिश नहीं हुआ है, बल्कि उनको डिफेंड करने के लिए काफी हुआ है। जैसे नितिन गडकरी जी चले गए जयपुर में, उनको पूरा समर्थन दिया, किस आधार पर दे रहे हैं, क्या पार्टी ने उसको सारा इन्वेस्टिगेट करके क्लीन चिट दे रहे हैं।
जी, वैसे तो नरेंद्र मोदी जो है अपने अभियानों के बारे में खूब चर्चाएं करते हैं, ट्विटर पे बहुत ही एक्टिव है, लेकिन इन सभी मामलों पर, चाहे सुषमा का मामला हो या स्मृति ईरानी का मामला हो या वसुंधरा का, किसी भी मामले पर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से पार्टी जो है डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएगी?
लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और पार्टी के नेतृत्व एक प्रकार से एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में लग रहे हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो भी कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो कोई विद्रोह से डर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि टाइम इज रनिंग आउट, यानी ज्यादा समय नहीं है इनके पास, और कुछ ना कुछ इनको मतलब स्टेप्स लेने होंगे ताकि और बड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली डैमेज बीजेपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा हो रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुशीला सिंह। और अब चलते हैं गुजरात, जहां पिछले 36 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाके प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने इस बीच हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने अंकुर जैन से पूरी जानकारी मांगी।
बारिश, मूसलाधार बारिश हुई है, खास करके सौराष्ट्र है, साउथ गुजरात है, सूरत का इलाका और अहमदाबाद में कई इलाकों में पानी भर चुका है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सौराष्ट्र में कई इलाकों में गांव में बिजली गुल हो चुकी है और शहर, स्कूल और कॉलेज को अगले 3 दिन तक की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। और इस वजह से अहमदाबाद बॉम्बे के बीच का जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अहमदाबाद की कई सारी फ्लाइट डाइवर्ट हुई है, और जो खबर मिल रही है वो एक खबर ये है कि करीबन अमरेली इलाके में 25 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो बारिश की वजह से जिनके घर धराशायी हुए, उस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और स्टेट में पूरी तरह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सरकार ने एक फ्लड कंट्रोल इमरजेंसी सेंटर शुरू किया है। और ये माना जा रहा है कि जो वेदर फोरकास्ट जो बता रही है कि 48 घंटों में बारिश शायद कई इलाकों में और ज्यादा तेज हो सकती है।
जी अंकुर, ये बताइए कि जो सौराष्ट्र का इलाका आप बता रहे हैं, जहां राजकोट, अमरेली, जूनागढ़ ये सारे इलाके हैं, और आपने बताया कि वहां हजारों लोग प्रभावित हैं, जूनागढ़ और इन इलाकों से क्या खबरें आ रही हैं राजकोट वगैरह से?
सौराष्ट्र के जो इलाके हैं, वहां शाम को ही इंडियन एयरफोर्स की मदद से करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतर किया गया है। और जूनागढ़ का जो इलाका है जहाँ गिर लायन सेंचुरी है, वहाँ पे कई इलाकों में, आसपास के इलाकों में 30 इंच या 35 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। तो इस वजह से जो गिर सेंचुरी के जो प्राणी है, खास करके शेर है, वो कई इलाकों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स बता रहे हैं वो स्ट्रैंडेड है, और वो पानी के इलाकों से कई जगह पर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कई वो ऊंचे जगहों पर चढ़े हुए हैं, लेकिन अगर पानी कम नहीं हुआ तो इस वजह से शायद स्थिति वहां पे गंभीर बन सकती है। और जो शेर जो सेंचुरी के बाहर हैं, वो रेसिडेंशियल जो रहसी इलाके हैं, जो जहाँ गांव है, वहाँ रहकर, पानी से दूर रहकर वहाँ आने की भी खबर है।
तो जो सरकारी अधिकारी हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या वो स्थिति में हैं कि अब ये जो शेर बाहर आ रहे हैं और जो फंसे हुए हैं, उनको, उनसे उस स्थिति को निपटने के लिए ये लोग तैयार हैं, कुछ कर पा रहे हैं?
मैं, ऐसी स्थिति पहले हुई है कई सालों पहले, जब इसी तरह की स्थिति हुई थी तब कई सारे शेरों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि इलाका इतना बड़ा है और काफी बड़ा इलाका है, और यहाँ पे अगर इतनी बारिश के कारण, हाल फिलहाल तो कोई स्थिति में जो जानकर सरकारी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, हाल फिलहाल जो किया जा रहा है वो है कि जो लोग जो निचले विस्तार में जो लोग हैं उन्हें स्थानांतर किया जा रहा है।
अंकुर जैन से बात कर रही थी हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमरीकी प्रांत लुइजियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल ने अमरीका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। जिंदल भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं सलीम रिजवी।
अमरीका के लुइजियाना प्रांत के गवर्नर भारतीय मूल के बॉबी जिंदल भी अब अमरीकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में औपचारिक तौर से शामिल हो गए हैं। जिंदल ने बुधवार को न्यू ऑर्लींस में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी होने की घोषणा की।
I am running for president without permission from headquarters in Washington DC.
मैं वॉशिंगटन में मुख्यालय से आज्ञा लिए बगैर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। इस तरह माना जा रहा है जिंदल ने अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी के अन्य नेताओं से अलग दिखाने की कोशिश की है। अगले वर्ष 2016 में नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब तक रिपब्लिकन पार्टी के 13 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। ये पहली बार है कि किसी भारतीय मूल के अमरीकी ने अमरीका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव मैदान में औपचारिक तौर पर गंभीरता से लड़ने की घोषणा की है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए जिंदल ने कहा कि नेता लोग अब अमरीकियों को बांटना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि वो नस्ल, रंग और आर्थिक स्थिति के हिसाब से अमरीकियों को बांटने वालों से तंग आ चुके हैं।
I'm sick and tired of people dividing Americans, and I am done with all this talk about hyphenated Americans. We are not Indian Americans, African Americans, Irish Americans, rich Americans, or poor Americans. We are all Americans.
जिंदल कह रहे थे, हम ना इंडियन अमेरिकन हैं, ना अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ना आयरिश अमेरिकन हैं, ना अमीर अमेरिकन, ना गरीब अमेरिकन, बल्कि हम सारे अमेरिकन हैं। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को अब खुल के सच्चाई बोलनी चाहिए। जिंदल कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता अपने रूढ़िवादी विचार छुपाते रहते हैं, लेकिन बॉबी जिंदल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तो दूर, खुद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार चुना जाना भी बहुत ही मुश्किल है। एक ताज़ा सर्वेक्षण में बॉबी जिंदल को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सिर्फ 1% रिपब्लिकन पार्टी के वोटरों का समर्थन मिला। बॉबी जिंदल वर्ष 2008 में लुइजियाना राज्य के गवर्नर चुने गए थे और 2012 में वो दूसरी बार भी चुनाव जीते थे, लेकिन अब लुइजियाना के गवर्नर की हैसियत से भी उनका समर्थन घट रहा है। लुइजियाना के बेटन रूज शहर में रहने वाली भारतीय मूल की कुलविंदर सिंह एक जनरल स्टोर चलाती हैं। वो कहती हैं प्रांत में बॉबी जिंदल के काम से अधिकतर लोग खुश नहीं हैं।
यहाँ पे तो काफी कुछ ऐसी चीजें जो है स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन में इतना कुछ उसने गड़बड़ किया है कि People don't like that.
अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के बहुत से लोग बॉबी जिंदल से इस बात पर भी नाराज रहते हैं कि वो अपने आप को भारतीय मूल का बताने से भी कतराते हैं।
Well, वैसे तो वो भी पंजाबी हैं, बॉबी जिंदल भी, बट वो तो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं इंडियन भी हूँ।
बॉबी जिंदल अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी बहुप्रचारित स्मार्ट सिटी स्कीम और कई शहरों को आधुनिक बनाने वाली योजना शुरू करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज दिल्ली सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। बिहार में अपहरण और फिरौती के मामले में जेडीयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी आज भी सुर्खियों में रह सकती है। चुनाव के मद्देनजर इसको लेकर बयानबाजी हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज नेपाल में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगी और यूरोपीय नेताओं की ब्रसेल्स में बैठक हो रही है जिसमें ग्रीस के कर्ज संकट पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है।
पाकिस्तान की पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं ने ब्रिटिश अधिकारियों को बताया है कि उन्हें भारत सरकार से फंडिंग मिली। बीबीसी को पाकिस्तान के विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली है। भारतीय अधिकारियों ने इस दावे को पूरी तरह आधारहीन बताया है, जबकि एमक्यूएम ने इन दावों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एहतशामुल हक के पास और ये जानते हैं कि वहाँ के अखबार इस खबर को कैसे देख रहे हैं। जी एहतशाम।
देखिए जी, कल से जब से खबर आई है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज्यादा कवरेज दी गई है। टेलीविजन पे हर घंटे के बाद मेन खबर ये बीबीसी की होती थी। मेरे सामने पाकिस्तान के चार बड़े अखबार पड़े हुए हैं। डॉन अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है ये, अपनी चार फ्रंट पेज पे चार कॉलम की इसकी खबर है। बीबीसी रिपोर्ट अक्यूजेस एमक्यूएम ऑफ रिसीविंग फंड फ्रॉम इंडिया, मुत्तहिदा रिजेक्ट्स चार्जेस। इसी तरह अंग्रेजी का दूसरा अखबार है ये, लिखता है द न्यूज एमक्यूएम फॉर इंडियन फंड्स मिलिट्री ट्रेनिंग बीबीसी कोर्ट्स पाकिस्तानी ऑफिशियल। साथ ही अखबार जो है इसने उसने एडिटोरियल भी लिखा है जिसमें बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए हैं, और उसका हेडलाइन उसका ये है कि डार्कनिंग स्काई, कि ये क्या हो रहा है। फिर ये दुनिया उर्दू का अखबार है एक बड़ा, ये लिखता है, इसकी बैनर हेडलाइन है, भारत में एमक्यूएम को फंड और दहशतगर्दी की तरबियत दी, बीबीसी की रिपोर्ट। उसके बाद एक दूसरा बड़ा अखबार है उर्दू का, नई बात, ये लिखता है भारत मुतहदा की माली और अस्करी तरबियत करता रहा है, बीबीसी। फिर फ्रंट पेज पे इसकी एक और है, मुतहदा पर बीबीसी की रिपोर्ट, पार्लिमानी राहदारियों में जहर बहस, लगता है एमक्यूएम पर पाबंदी लग जाएगी, रिपोर्ट का वक्त, इंतखाब अहम, मुख्तलिफ एमक्यूएम। तो ये रिपोर्ट्स में भी कल से सारे जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी जो है जे इमरान पार्टी, इसने ये सवाल उठाया है कि अगर ये वाकई मुतहदा इमदाद लेती रहती है, फंड लेती रही है माजी में, और ट्रेनिंग लेती रही है, लोग हिंदुस्तान से आके इनको यहाँ पे ट्रेन करते थे या वहाँ पे ट्रेन होके यहाँ पे आके मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी में कार्रवाई में थे, तो इन पर मुकदमा चलना चाहिए। इसी तरह रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं पीएमएलएन के, उनके बयान छपे हैं।
अच्छा ये बताइए एहतेशाम की, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान की ओर से कोई बयान आया है इस मामले पर?
उन्होंने इसको मुतहदा की जो पार्टी है, ये जो कमेटी है इनकी कराची बेस्ड और लंदन में, इन दोनों की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि ये एक ही आदमी है बीबीसी का।
और भारत और इंडिया ने जो इसको खारिज किया है, क्या इंडिया की बात को भी वहां के अखबारों ने छापा है? बहुत ही संक्षिप्त में बताइएगा, समय कम है हमारे पास।
जी इंडिया के बड़ा कम इस बारे में दिखाया गया, लेकिन इंडिया की तरफ से जो इसके डिनायल आया वो भी है, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल भी छोड़े गए हैं कि ये बीबीसी की रिपोर्ट जो है बड़ी क्रेडिबल है।
बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशामुल हक आपका। ये थे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एहतेशामुल हक। और अब चलते हैं खेल की दुनिया में। बांग्लादेश के खिलाफ पहले दो एक दिवसीय मैचों में मिली करारी हार के बाद भारत ने सीरीज तो गंवा दी, लेकिन तीसरा वनडे जीतकर लाज बचा ली। क्रिकेट और हॉकी वर्ल्ड लीग की खबरें लेकर आए हैं आदेश गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत ने कल मीरपुर में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 77 रन से करारी मात दी। जीत के साथ भारत ने भले ही बांग्लादेशी दौरे का अंत किया, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश भारत से एक दिवसीय सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब रहा। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश ने पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 79 रन से और दूसरे एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से मात दी थी। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ पहली बार कोई द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज अपने नाम की। कल बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी की दावत दी, जिसका लाभ उठाते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 317 रन बनाए। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 73 गेंदों पर 75 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 77 गेंदों पर 69 रन बनाए। जीत के लिए 318 रनों के लक्ष्य को सामने रखकर मैदान में उतरी बांग्लादेशी टीम 47 ओवर में 240 रनों पर ही ढेर हो गई। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सोमे सरकार ने 40 और विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने 34 रन बनाए। उनके अलावा सब्बीर रहमान ने 43 और नासिर हुसैन ने 32 रनों की पारी खेली। और अब बात हॉकी की।
फंटाना कैटराया आल्सो स्कोरिंग फॉर इंडिया।
बेल्जियम में आयोजित किए जा रहे विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में महिला वर्ग में पूल बी के मुकाबले में कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। भारत ने खेल के 20वें मिनट में पहला गोल किया जब रानी रामपाल ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। इसके बाद 29वें मिनट में भारत ने रानी रामपाल के ही गोल की मदद से 2-0 की बढ़त हासिल की। इसके बाद पोलैंड ने कुछ जवाबी हमले बोले और इसी कोशिश में 49वें मिनट में पोलैंड की जागास्का मैग्डालेना ने गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन भारतीय हॉकी टीम ने भी हार नहीं मानी और 54वें मिनट में वंदना कटारिया ने गोल कर भारत को 3-1 की मजबूत बढ़त दिला दी। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला मुकाबला शनिवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा।
और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह को अपहरण और फिरौती के एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अमरीकी राज्य लुइजियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अमरीका के बोस्टन शहर में 2 साल पहले हुए बम धमाके के दोषी जोखार सारनाएव ने हमले के पीड़ितों से माफी मांगी है। हालांकि कई पीड़ितों का कहना है कि इस माफी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीक प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास अपने देश के कर्ज संकट के बारे में मतभेदों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देशों से देर रात तक ब्रसेल्स में बात करते रहे और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन की साइबर गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।